पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र ने रूही को डांटा, धमकाया और उसे गोद में उठा लिया और उसे बाथरूम में ले जाकर बाथटब में फेंक दिया। इस अध्याय में रुद्र रूही के कपड़े उतार देता है और उसे डांटता है कि वो उससे कुछ भी ना छुपाए और उसकी उंगली पर दांतों के निशान के लिए उसे दंडित करता है। रूही डर जाती है और रुद्र को एक साइको की तरह देखती है। दूसरी ओर देवांश दिशा को फंसाने की योजना बनाता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 74। अब आगे। थैंक यू सर मेरी हेल्प करने के लिए, अब मैं चलती हूँ, दिशा की बात सुनकर देवांशु से रोकते हुए बोला। मिस दिशा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इस हालत में यहाँ पर कैसे आईं? आपके साथ ये सब किसने किया? देवांश की बात सुनकर दिशा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कसते हुए बोली। सर मुझे मालूम है आपको ये सुनकर मुझ पर गुस्सा आएगा, पर आपके भाई जो कुछ भी मेरी रूही के साथ कर रहे हैं वे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे साथ भी ये सब उन्होंने ही किया। उन्हीं के बॉडीगार्ड्स मुझे इस तरह बांधकर यहाँ छोड़कर गए हैं। सर आप प्लीज़ अपने भाई को समझाएं, वे रूही के साथ इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वे उनके साथ नहीं रहना चाहती तो वे इस तरह रूही को अपने साथ रखने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। रूही की भी अपनी लाइफ है और वे अपनी लाइफ में जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकती है। दिशा को इतने गुस्से में देखकर देवांश दिशा का हाथ पकड़ उसे एक चेयर पर बैठाता है और उसे पानी का गिलास देते हुए कहता है। मिस दिशा सबसे पहले आप पानी पीजिए और थोड़ा शांत हो जाइए। देवांश की बात सुनकर दिशा पानी को पी लेती है क्योंकि उसे सच में काफ़ी प्यास लगी थी। पानी पीने के बाद वे गिलास को टेबल पर रख देती है, जिसे देख देवांश दिशा को समझाते हुए बोला। देखिए मिस दिशा, मुझे मालूम है भाई ने जिस तरह से रूही से शादी की वे काफ़ी गलत था, मगर मिस दिशा आप मेरा यकीन कीजिए, भाई दिल के बुरे नहीं हैं। वे रूही से प्यार करते हैं और उनके प्यार ने उनके हाथों से ये सब करवा दिया, लेकिन अब रूही भाई के साथ खुश रहेगी, भाई उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। देवांश की बात सुनकर दिशा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे मालूम था कि वे अपने भाई की ही साइड लेंगे, इसीलिए दिशा देवांश को देखते हुए बोली। सर मुझे अब घर जाना है, मैं चलती हूँ। इतना बोल वे चेयर से उठ जाने लगती हैं, जिसे देख देवांश दिशा को रोकते हुए बोला। मिस दिशा रुकिए, ऑफिस टाइम खत्म होने ही वाला है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। देवांश की बात सुनकर दिशा देवांश को मना करते हुए बोली। नहीं सर मैं चली जाऊँगी, थैंक यू। इतना बोल वे तुरंत देवांश के कैबिन से निकल जाती है। वहीं देवांश दिशा को जाते देख मुस्कुराता है, तभी उसकी नज़र उस गिलास पर पड़ती है जिसमें अभी अभी दिशा पानी पीकर गई थी। उस गिलास में अभी भी थोड़ा बहुत पानी था, साथ ही साथ दिशा की हल्की लिपस्टिक के निशान भी उस गिलास पर बने हुए थे, जिसे देख देवांश उस गिलास को उठा दिशा के होठों के निशान जहाँ बने थे उस तरफ से ही पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद देवांश उस गिलास को देख मुस्कुराते हुए बोला। गुड गर्ल, आज तो मैं तुम्हारे होठों के निशान से ही काम चला ले रहा हूँ, पर बहुत ही जल्द इस निशान की जगह तुम्हारे खुद के होठ होंगे। इतना बोल वे एक डेविल स्माइल कर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और आज दिशा के साथ बिताए गए खूबसूरत पल को याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के कमरे के बाथरूम में। वहीं रुद्र जब रूही को किसी सोच में डूबा हुआ देखता है और अपने सवाल का जवाब नहीं पाता तो अपनी खतरनाक मगर धीमी आवाज़ में रूही से पूछता है। रू तुम किस सोच में डूबी हुई हो? कहीं उसी लड़के के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना, इसीलिए तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रही हो। रुद्र की खतरनाक आवाज़ सुन रूही अपनी सोच के बाहर आती है। वे जानती की थी अगर उसने रुद्र के सवालों का जवाब उसके मुसाबित नहीं दिया तो रुद्र उसे इसके भी बड़ी सजा दे सकता था, जो वे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसीलिए वे रुद्र को देखते हुए अपनी पलके झुका अपनी धीमी मगर प्यारी आवाज़ में बोली। नहीं मैं किसी लड़के के बारे में नहीं सोच रही थी और आगे से मैं किसी लड़के के करीब नहीं जाऊँगी, अब मुझे जाने दो, मुझे ठंड लग रही है। रूही की बात सुनकर रुद्र रूही को डांटते हुए बोला। रू तुम सच में काफ़ी इनोसेंट हो, तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम्हें ठंड लग रही है। चलो आओ मैं तुम्हें कपड़े पहना देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें अच्छे से नहला देता हूँ क्योंकि उन गंदे लड़कों ने तुम्हें छुआ है और मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद, खासकर अपनी रूह के ऊपर तो बिल्कुल नहीं। रुद्र ये सब काफ़ी अलग टोन में बोल रहा था, जो रूही को डराने के लिए काफ़ी था, लेकिन फिर भी वे बोली। मैं अच्छे से नहा लूँगी और कपड़े भी बदल लूँगी, तुम प्लीज़ मेरे कपड़े ला कर दे दो। रूही की बात सुनकर रुद्रा भी कुछ बोलता तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसे देख वे फोन को उठाकर देखता है तो एक इम्पॉर्टेंट कॉल था, जिसे देख रुद्र रूही को देख बोला। ठीक है रू तुम अच्छे से नहा लो, मैं तुम्हारे कपड़े बेड पर निकाल कर रख देता हूँ। इतना बोल वे रूही के माथे पर किसकर बाहर चला जाता है और कॉल रिसीव कर बात करने लगता है, फिर थोड़ी देर में आने को बोल कॉल काट देता है, फिर उसके बाद अपनी रूह के लिए एक ब्लू कलर की सिंपल की सूट और उसके बाकी के कपड़े निकाल बेड पर रख देता है और दरवाज़ा खोल रूम को अच्छे से लॉक कर सिंघानिया विला से निकल जाता है।
वहीं रुद्र के जाते ही रूही चैन की साथ लेती है और बिना नहाए ही तुरंत बाथटब से निकल बाथरूम पहन बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोल देखती है तो उसे रुद्र कहीं भी नहीं दिखता, जिसे देख वे चैन की साथ लेती है और तुरंत कमरे में आ जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बेड पर रखते अपने कपड़ों पर जाती है, उसका चेहरा गुस्से और शर्म की वजह से लाल हो जाता है, क्योंकि रुद्र ने उसके कपड़ों के साथ साथ उसके पर्सनल कपड़ों को भी निकालकर बेड पर रख कर गया था, जिसे देख रूही को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वे गुस्से में बोली, घटिया आदमी, इसके अंदर बिल्कुल भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है कि एक लड़की के पर्सनल कपड़ों को बिना उसकी मर्जी से हाथ नहीं लगाते। फिर रुद्र की हरकतों को याद करते हुए बोली, ये आदमी सच में साइको है, इसके बहुत सारे रूप हैं, मुझे इस आदमी से बचकर रहना होगा, वरना ये एक दिन मेरी जान लेने के पहले भी एक बार नहीं सोचेगा। इतना बोल वे तुरंत अपने कपड़े ले बाथरूम में चली जाती है, क्योंकि उसे जल्द के जल्द नीचे जाना था। उसे तो अब इस रूम में रहने में भी डर लग रहा था, इसीलिए वे जल्दी से रेडी हो परी के पास जाने के लिए सोचती है। कुछ देर में रूही अपने कपड़े पहन तैयार हो जाती है और अपने बालों को डालने लगती है, जिस वजह से उसकी उंगली में दर्द होने लगता है, जिसे महसूस कर वे रुद्र को मन ही मन गालियां देने लगती है।
फिर उसी तरह अपने बालों को खुला छोड़, जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोलने के लिए जाती है, वैसे ही उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है।